मेरे पास प्रश्न है कि श्री कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डाला जाए। श्री कृष्ण भक्ति पर मैं प्रकाश क्या डाल सकता हूं? भगवान भी नहीं डाल सकते। भगवान के ऊपर भी भक्ति प्रकाश डालती है। फिर भी कुछ कहना ही है, आपको सुनना भी है। भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे यहां शास्त्रों में अनेक अर्थ किए गए हैं। भजनम भक्ति, भजनम नाम रसनम, ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भजन शब्द जो है, भक्ति शब्द जो है, उसका अर्थ किया है रसनम। जैसे गाय भैंस चारा चर लेती हैं, खा लेती हैं, उसके बाद फिर घंटे दो घंटे बाद भीतर से निकाल करके पागुर करती हैं, उसका रस लेती हैं। ऐसे ही भक्ति का मतलब है भगवान का रस लेना। दो प्रकार की भक्ति प्रमुख रूप से होती है, इसलिए दो प्रकार का अर्थ भी किया है शास्त्रों ने। भज्यते इति भक्ति, भजनम इति भक्ति। भज्यते माने अंतःकरण को भगवदाकार जिससे किया जाए। ये अंतःकरण अभी मायाकार है, क्योंकि माया की भक्ति करते हैं हम। जब अंतःकरण भगवदाकार बनाया जाए तब वो भक्ति कहलाएगी। और एक सिद्धा भक्ति होती है, तो भगवदाकार बन गया अंतःकरण, वो भी भक्ति कही जाती है। अर्थात भगवदाकार अंतःकरण बनाते समय भक्ति कही गई, और जब भगवदाकार अंतःकरण बन गया तब भी भक्ति कही गई। कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, भक्ति शब्द का अर्थ है भागो भक्ति। हम भगवान के भाग हैं। ऐसा जिसका रियलाइजेशन हो जाए हम भगवान के भाग हैं, बस उसी का नाम भक्ति। जैसे आपके शरीर के भाग हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नासिका है, ये सब आपके भाग हैं, आप माने आत्मा। तो ये सारे भाग आत्मा की सर्विस करते हैं निरंतर। आंख अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखती है, क्यों? आत्मा को सुख मिले, नहीं मिला ये बात पृथक है, लेकिन सर्विस तो कर रही है बेचारी। आंखों का दोष क्या? मन ने कहा देखो, यस नो कहना नहीं जानती इंद्रियां। मन ने ऑर्डर दिया, फौरन आंख उठी, देखा। क्या देखा? ये आंख नहीं बताएगी, ये मन बुद्धि आएंगे, वो डिसीजन लेंगे, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजेंगे आत्मा के पास। ये जो मैं देख रहा हूं यही तुम चाहते हो सरकार? तो आत्मा कहेगी नहीं, हमारी प्यास नहीं बुझी। अनंत बाप देखे, अनंत माँ देखे, अनंत स्त्री पुरुष देखे, अनंत संसार के दृश्य देखे, लेकिन हमारी प्यास बढ़ती जा रही है, ये कैसी दवा है? इसी प्रकार अनंत शब्द सुने, अनंत वस्तुओं को सूंघा, अनंत वस्तुओं का रसास्वादन किया रसना से, लेकिन आत्मा सदा ये जजमेंट दे देती है, ये नहीं अच्छा, ये नहीं तो सर्वेंट का काम तो सर्विस करना है, ये नहीं तो वो ले, वो भी नहीं अच्छा, वो नहीं तो वो ले, वो भी नहीं। यही नाटक अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन सर्वेंट न रिजाइन कर सकते हैं और न सर्विस में इतराज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। एक सेकंड को कोई सर्वेंट खिलाफत नहीं कर सकता, सब सर्विस करते रहते हैं। कितने भक्त हैं ये लोग आत्मा के, सोचो। आप लोग 24 घंटे में 6 घंटे सोते हैं, 18 घंटे में पौने 18 घंटे आपका जो वर्क होता है वो सब बेमनी से होता है। बेमनी से सवेरे उठे, नींद आ रही थी, रजाई के अंदर बैठे थे, घंटी बज गई। ये घंटी तो बड़ी मुसीबत है। देखिए, घर छोड़ करके आप लोग आए हैं जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए, यथाशक्ति हम सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, और इतना बड़ा सौभाग्य 5 अरब में 500 को भी नहीं प्राप्त है जो आप लोगों को मिल रहा है यहां पर। लेकिन फिर भी जब सवेरे घंटी बजती है तो पहले हृदय में खट होता है, बाद में भले ही आप सोचें अरे भाई क्या बेवकूफी की बात है, आदत खराब है, वरना तो घंटी बजना है तो सौभाग्य है, वरना हम सोते रहते और 2 घंटे। तो देखो, उठने से लेकर, अरे यहां मान लो आप कहेंगे कि साहब एक लेबर बहुत ज्यादा है, अपने अपने घरों में भी अगर आपकी बीबी जगावे सवेरे, रे उठो 7 बज गए, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तो भी आपको भीतर से अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपकी बुद्धि जब काम करती है, हाँ भाई उठना ही पड़ेगा, अब 7 बज गए तब तो उठना ही पड़ेगा, अब तो 8 बज गए, अब तो, यानी बुद्धि के आर्डर से मन काम कर रहा है, मन नहीं चाहता। अब नहीं उठेंगे तो नहीं सर्विस में जाएंगे, तो फिर ये संसार के सामान जिनके जिनसे हम आनंद की आशा रख रहे हैं वो सब कैसे हिसाब बैठेगा, इसलिए उठना चाहिए, जाना चाहिए। तो आप लोगों का तमाम वर्क 99% बेमनी से होता है। इसका मतलब ये कि आपकी सर्विस के लिए हर सर्वेंट सदा तैयार है, वो कभी मना नहीं कर सकता, जबकि उस सर्वेंट को अनंत बार धोखा ही मिला, फिर भी निराश नहीं हुआ। रिसर्च चल रही है, एक दोस्त बनाया, इसने धोखा दिया, इसको बनावे ये अच्छा आदमी है, अरे ये भी स्वार्थी निकला, तीसरा बनावे अरे ये भी स्वार्थी निकला, ये रिहर्सल करते करते मर गए, कोई सच्चा दोस्त भी मिला? सच्चा दोस्त विश्व में कौन होगा, तुम धोखे में हो। सब अपने स्वार्थ के दोस्त हैं, और स्वार्थ है आनंद। जिसको जहां आनंद की पूर्ति का भ्रम हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, बस वहां दोस्ती, कंफ्यूजन निकल गया, दोस्ती निकल गई। समाप्त। तो जैसे आत्मा की सर्विस ये आपका शरीर कर रहा है, इसी प्रकार आपको इन सर्वेंट के साथ भगवान की सर्विस करनी चाहिए। ये भक्ति, यानी इंद्रियों से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, सब सब परिवार, आत्मा से भी। देखो, इस शरीर की आत्मा आप हैं, इसलिए ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सर्वेंट हैं, आत्मा अध्यक्ष है, और आत्मा भी परमात्मा का शरीर माना गया है वेद में। जस्य आत्मा शरीरम जस्याक्षरम शरीरम, ये आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। तो जैसे ये पंच महाभूत का शरीर आत्मा की सर्विस करता है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का शरीर है, उसको भी अपनी आत्मा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ये नेचर है। इसलिए भागो भक्ति, कुछ आचार्यों ने ऐसा अर्थ किया और कुछ ने किया भंजनम भक्ति। भंजनम भक्ति माने केवल भक्ति ही ऐसी है जो अविद्या ग्रंथि का भंजन कर सकती है। ये जो माया है, इसकी गांठ पड़ी हुई है, जो इस गांठ को भंजन करने में केवल श्री कृष्ण भक्ति ही समर्थ है, और कोई मार्ग नहीं। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, सीधा सीधा अर्थ करो, भज इत्येष वैधातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। वेद व्यास ने ये अर्थ किया, उन्होंने कहा भाई भज धातु है, उससे बना भक्ति शब्द, और भज धातु का अर्थ है सेवा, तो हमको सेवा करना है भगवान की। ये बात जिस क्षण में मन में बैठ जाए, बस भक्ति शुरू हो गई। सेवा वासना ही भक्ति है, सेवा वासना, सेवा वासना, इसी को बढ़ाते जाना है, भगवान और गुरु, बस नीचे नहीं आना है माया के क्षेत्र में। माया के क्षेत्र में अगर आप सेवा वासना बढ़ाएंगे तो अनन्य नहीं रहेंगे, आपको अनन्य बनना है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः, गीता का चैलेंज है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, गीता का चैलेंज है। सर्वभावेन भारत मामेकं शरणं व्रज मामेव ये प्रपद्यन्ते। हर जगह एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि आपको अनन्य बनना है। इसलिए भगवान और भगवान की पूरी शक्ति जिसको मिल चुकी है, वो महापुरुष, बस इन्हीं दोनों की सेवा भावना बढ़ाना है। तो गुरु तो प्रत्यक्ष होता है, उसकी सेवा आपको प्रत्यक्ष मिल सकती है, और भगवान की सेवा मानसिक रूप से बढ़ाना है। हमारी जो भीतर की उत्कंठा है, हाय वो दिन कब आएगा जब श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष सेवा करेंगे। अस्तु, भक्ति के तमाम अर्थ हैं। ये भक्ति क्या वैलक्षण रखती है, थोड़ा समझ लीजिए। जो विलक्षणता भक्ति में है वो और किसी में नहीं, और किसी का मतलब कर्म ज्ञान। आप लोगों को यहां हमारे विद्यार्थी लोग बताते होंगे कि तीन मार्ग कहे गए हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। लेकिन कर्म ज्ञान में लक्ष्य भी नहीं प्राप्त होगा और तमाम शर्तें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक साधारण सा यज्ञ करने में भी 6 प्रकार के नियम प्रतिबंध हैं, उनका 100% पालन हो, अगर 6 में से एक भी गड़बड़ हुआ तो आप लोगों को यहां बताया गया होगा कि एक वाक्य के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गड़बड़ कर दिया मुनियों ने, तो उस राक्षस का यज्ञ उल्टा फल दे गया। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, ये मंत्र था, यानी इंद्र का शत्रु बढ़े, माने राक्षस बढ़े। और ऋषियों ने चालाकी की कि ये तो बेपढ़ा लिखा है राक्षस। हम बोलेंगे यही, लेकिन इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व आद्युदात्त के स्थान पर अंत्योदात्त लगा दिया। शब्द वही, अक्षर वही, वेदों में स्वर होते हैं। जैसे बोलने बोला जाए सहस्र शिरेखा पुरुख तत्सौभितुर्वरेण्य, ये वेद मंत्र बोलने का तरीका है। अब नहीं किसी को मालूम हो तत्सौभितुर्वरेण्य गो देवस्य, पाप लग गया, अपराध हो गया, एक स्वर से भी त्रुटि हो गई तो दंड मिलेगा। एक बार मैं अपने पढ़ने की लाइफ का हाल बताऊं, काशी में समस्त विद्यालयों के सब विद्यार्थी जो बड़े बड़े काबिल थे आचार्य वगैरह के इकट्ठे हुए, तो एक बंगाल से आया, उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं इतने विद्यार्थियों में सही सही गायत्री मंत्र बोलना कितनों को आता है। तीन चार लड़के खड़े हुए, सब में गलती निकाल दिया उसने। 24 अक्षर कुल हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का सही सही उच्चारण इन्हें गिने को आता है, 100 को भी नहीं आता होगा पूरी इंडिया में, ऐसा हमारा ख्याल है। अब सुनने में आपको नहीं मालूम पड़ेगा, देखिए मैं बोलता हूं तत्सौभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कोई खास बात तो नहीं सुनने में लगेगी कि हाँ हम भी बोल सकते हैं महीना दो महीना मेहनत करके। नो, बड़ी बारीक बात है इसमें। पहले आप लोग काका गाका बोलना सीखिए, वही गलत है। तो वेद मंत्र बोलना अत्यंत कठिन है, एक स्वर में त्रुटि हो जाए तो करोड़ों रुपया का यज्ञ हो रहा है लेकिन यज्ञ कराने वाले का सर्वनाश हो जाएगा, इतने कड़े नियम हैं। तो करने में कर्म की इतनी मेहनत, और अगर कर लिया किसी ने, पूरा भी कर लिया, तो आप लोग रोज सुनते हैं उसका फल नश्वर स्वर्ग, और कर्म ने स्वर्ग पहुंचा दिया और कर्म नष्ट हो गया, मर गया, वो स्वयं नष्ट हो गया। ज्ञान ने निर्विकल्प समाधि पर पहुंचा दिया, अज्ञान को नष्ट कर दिया, अविद्या को नष्ट कर दिया, लेकिन विद्या माया बची और वो भी नष्ट हो गया। विद्या रह गई, ज्ञान लौट आया कि भाई हम वहां तक नहीं जा सकते, हम तो अविद्या को नष्ट कर सकते हैं, विद्या माया को नष्ट करने की शक्ति हम में नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अब दूसरे को ले आएंगे यही पहुंचा देंगे आधे रास्ते, अब तीसरे को ले आएंगे उसको भी वही पहुंचा देंगे आधे रास्ते। तो कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो सार्वभौम हो। और भक्ति में देखो कितनी विशेषताएं हैं, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, चाहे विषयी हो चाहे विरक्त हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, योगी हो ऋषि हो मुनि हो परमहंस हो मुक्त हो, अंतिम क्लास मुक्त। हाँ, जिसकी अविद्या भी नष्ट हो गई विद्या भी नष्ट हो गई, ऐसे मुक्त को भी भक्ति का अधिकार। मुक्ता अपि एनम उपासते, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते। ये शंकराचार्य एडमिट कर रहे हैं, औरों को छोड़ दो। जिन शंकराचार्य ने कहा नस पुनरावर्तते नस पुनरावर्तते, यही वो समावली अंते। जीव जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मरने के बाद कहीं जाता वाता नहीं, यही लीन हो जाता है, यही महाकाश बन जाता है, ब्रह्म ही है, किसमें लीन होगा, सर्वव्यापक हो जाता है। अब उनसे पूछा जाए कि तुमने कहा था सर्वव्यापक हो जाता है, फिर तुम ही कह रहे हो मुक्ता लीलिया विग्रहं कृत्वा, शरीर धारण करके वो मुक्त फिर श्री कृष्ण का भजन करता है, भक्ति करता है, तो वो तो लीन हो गया, वो रहा कहां जो भक्ति करने आएगा। किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता है। ये जीवात्मा मुक्त का मतलब है जीवात्मा परमात्मा में लीन रहता है लेकिन अपनी पर्सनैलिटी रखता है। सत्ता कहां चली जाएगी, वो तो रहेगी। इसीलिए वहां से लौटकर कोई कोई परमहंस ज्ञानी मुक्तात्मा शरीर धारण करके श्री कृष्ण भक्ति करता है। तो घोर पापात्मा बाल्मीक सरीखा, एग्जाम्पल हमारे यहां एक एग्जाम्पल है पापियों में टॉप करने वाला बाल्मीक। क्यों, अजामिल वगैरह? नहीं नहीं कोई नहीं, अजामिल तो नारायण बोला था, और वाल्मीकि कितना बड़ा पापी कि राम नहीं बोल पाया बेचारा। गुरुजी ने कहा राम राम किया कर, चुप। वो तो मारता था लोगों को, हत्याएं करता था, तो कहे मरा, तो गुरुजी ने कहा ठीक है मरा कहना तो आता ही है इसको, तो उनने कहा इसी को दोहराया जा, मरा 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 राम, तो राम बन गया। सोचो हमारे 5 अरब आदमी में एक भी आदमी आप ऐसा नहीं बता सकते जो मरा कह सकता है राम नहीं कह सकता। अरे या तो गूंगा होगा, छोड़ो उसको, लेकिन जब मरा कह सकता है तो राम क्यों नहीं कह सकता, उसका पाप नहीं कहने दे रहा है, इतना पाप। तो वाल्मीकि से लेकर के और मुक्तात्मा तक श्री कृष्ण भक्ति के सब अधिकारी है, सर्वेधिकारिणो यत्र शास्त्रतः सूयते भक्तौ निर्मात्रस्य अधिकारिता, संपूर्ण जीव अधिकारी है। अर्थात भक्ति समस्त जीवों के लिए, लेकिन कर्म नहीं, उसमें नियम है, ज्ञान नहीं, उसमें नियम है, निर्विण्णानाम ज्ञान योगः साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः, उसमें अधिकारित्व का निरूपण है, वो अधिकारी नहीं है तो जाना मत, प्रवेश नहीं होगा तुमको। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला वेदांत सूत्र तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो, लेकिन भक्ति में माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप यो नय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पिजान्ति परां गतिम। गीता, कोई हो पुरुष नपुंसक नारि नर जीव चराचर कोय, चार आचार दोनों को ले लिया, अब बोलो वृक्ष भी हो, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, कोई भी हो सब अधिकारी हैं भक्ति के। आंख बंद करके, क्यों साहब हम अधिकारी हैं, अरे क्वेश्चन न करो, सब अधिकारी हैं, हम तो साहब विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, आए तो अंगूठा छाप है, महामूर्ख है, शास्त्र वेद कभी सुना नहीं समझा नहीं, दोनों को आप एक ही क्लास में दाखिल कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रह्मा शंकर भी यहीं आके बैठेंगे इसी क्लास में जहां धन्ना जाट बैठा है। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान यस्यास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः। भागवत ज्ञात्वा अज्ञात्वा भगवान को जानकर भक्ति करे और चाहे अनजाने में भक्ति करे, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। चाहे दवा जान करके डॉक्टर पिए अपने लिए और चाहे अंगूठा छाप, एक गांव का गंवार डॉक्टर ने कहा बस ये निशान बना है ना, इतनी दवा पी लेना दो बार दिन में उतनी वो पी ले, दोनों को बराबर फायदा होगा। डॉक्टर के लिए कोई रियायत नहीं करेगी दवा की, ये जानता है दवा कैसे कैसे बनी है। देखिए वेद की ऋचाएं भी भगवान को नहीं जानती थी श्री कृष्ण को। अरे जब ब्रह्मा तक चक्कर खा गया तो और कौन जानने का दावा करे। लेकिन वो वेद की ऋचाएं भी काम भाव से शरणागत हो गईं, मनुष्य जान करके प्यार कर लिया उन्होंने। श्री कृष्ण ने एक लड़का है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इतना प्यार। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः, जार बुद्धि से प्यार किया। अस्वरूप विदो बलाः, अस्वरूप विदः, वो जानती वानती नहीं थी श्री कृष्ण कौन। इसी बात पर परीक्षित को डाउट हुआ था। सुखदेव परमहंस से भागवत सुनते सुनते और उनका मस्तिष्क चकराया, उन्होंने कहा महाराज ये जो गोपियां श्री कृष्ण को महापुरुष भी नहीं जानती थी, भगवान भी नहीं जानती थी, अपने से भी नीचे जानती थी, आपना के बौड़ माने आमार समहीन, जो उच्च कोट के महापुरुष हैं वो भगवान को या तो अपने बराबर मानते हैं या तो अपने से छोटा मानते हैं, ये ऐसी कुछ बात है। तो गोपियां अपने से छोटा मानती थीं, तभी तो गाली बकती थी, लफंगे चला आ रहा है पीछे पीछे, शर्म नहीं आती, लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। देखो जैसे संसार में साधारण लड़की लड़के आपस में व्यवहार करते हैं, इस तरह गोपियां व्यवहार कर रही हैं भगवान के साथ। और भगवान उस गाली को सुनकर विभोर हो रहे हैं। तो समस्त जीव भक्ति के अधिकारी हैं, वो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, सबको अधिकार बराबर का। मैं तो ये कहूंगा कि अज्ञानी जल्दी भक्ति कर सकता है, ज्ञानी को भक्ति करने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? कि पहले अपने ज्ञान को वो बाहर फेंके, क्योंकि वो ज्ञान का भी एक अभिमान होता है। बेवकूफ क्या समझता है, मैं समझता हूं शास्त्र वेद का रहस्य। ये जो खोपड़ी में बीमारी भरी हुई है, इस बीमारी को मिटावे तब वहां पहुंचे। तनादप सुनी चेन तरोप सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी यश्चदाहरी। ज्ञानाभिमान होना है तो सबसे भयानक रोग है। और अज्ञानी को क्या है, गुरुजी ने कह दिया मरा मरा किए जा जब तक मैं लौट कर ना आऊं, गुरु आज्ञा। बस कब लौट के आएंगे आप, ये पूछना नहीं है गुरुजी से, आज्ञा मानना है। उन्होंने कहा जब तक न लौट के आऊं, मैं कौन होता पूछने वाला कि कब तक लौट के आएंगे आप, किस सन में आएंगे बताइए। बस मरा मरा कहना मेरा धर्म है, मैं शिष्य हूं, बुद्धि लगाने का अधिकार नहीं। सोचो इतना बड़ा पापी टॉप का और इतनी गहरी श्रद्धा, इतनी गहरी श्रद्धा। हजार प्रकार से आप लोगों को समझाया जाता है, लॉजिक से, शास्त्रों से, वेदों से, फिर भी आपकी खोपड़ी कुकुरेती रहती है, कोई कोई क्वेश्चन बनाया करती है। और कहते आप लोग जरूर हैं हमको शरणागत, और देखो वो शरणागति देखो कि मैं जब तक लौट के ना आऊं ऐसे मरा मरा कहते रहना, उठना नहीं यहां से। अरे महाराज खाना वाना खा ले, फिर क्वेश्चन किया, बलमीक छा गई। तो भक्ति में सभी अधिकारी और सभी शास्त्रों में भक्ति की ही प्रधानता कही गई, सभी शास्त्रों में। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। ये भगवान भगवान की बात, भगवान का लाभ किसको मिलेगा, ये क्वेश्चन हुआ। तो वेद ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण में पराभक्ति हो और जैसी भक्ति श्री कृष्ण में हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, 100% एक। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। रोज आप सुनते हैं भक्ति रेवे नम नयति, एव शब्द का प्रयोग करते हैं, भक्ति से ही काम बनेगा। और गीता तो आप जानते ही हैं, अंतिम निर्णय यही हुआ गीता में, सर्वगुह्यतमं भूयस्तृणुमे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन द्रष्टुं ज्ञातुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं। भगवान का दर्शन चाहो, भगवान का ज्ञान चाहो, भगवान में लीन होना चाहो, जो भी भगवान संबंधी सामान चाहते हो भक्ति से ही मिलेगी। इसीलिए ज्ञानियों की जो अंतिम सीमा है, जिसके लिए गीता ने कहा जन्मांतर हजारों जन्मों में कश्चित यतति और यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति। हजारों जन्मों की बात है ज्ञान मार्ग में, और फिर भी अगर कोई पहुंच गया तो ससर्व विद्भजति माम सर्वभावेन भारत। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर वास्तविक ज्ञानी कोई बन जाएगा लाखों जन्मों के बाद तो अंत में उसको मेरी शरणागति करनी पड़ेगी, अगर नहीं करता वो ज्ञानी नहीं बना। अहंकारी है वो, ज्ञानाभिमानी है, ज्ञानी नहीं है। उसी के लिए वेदव्यास ने कहा है विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया। वो विमुक्त मानी है, विमुक्त मानते हैं अपने को, हम जीवन मुक्त हो गए हैं नहीं। वो पंडितम मन्यमाना है को वेद कहता है, अपने को ज्ञानी मानते हैं फैक्ट में नहीं। बिना भगवत प्रपत्ति के यानी भक्ति के अवलंब के बिना मुक्ति कहां कैसे। निश्चला त्वयि भक्तिर्या सैव मुक्तिर् जनार्दन। वेद व्यास का चैलेंज है कि भक्ति ही तो मुक्ति है, भक्ति छोड़ दिया तो मुक्ति कैसी। तो ज्ञान में भी तमाम अधिकारित्व का प्रश्न फिर कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक अहोई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। पहले तो कहने ही कठिन है। कोई ज्ञानी अगर प्रवचन करना चाहे तो प्रवचन नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि जब वो बोलेगा कि एक ब्रह्म है तो तुरंत क्वेश्चन होगा, वो तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम माने जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसको वाणी बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, ऐसा ब्रह्म है। तो तुम क्या बोल रहे हो फिर? चुप रहो। अरे तुम्हारा ब्रह्म जब अनिर्वचनीय है तो वचन क्यों प्रयोग क्यों कर रहे हो? वचन का ब्रह्म क्यों बोल रहे हो? तो अनिर्वचनीय है, न उसका नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न क्रिया है। आ यहां तक कि यह संसार कैसा है आपके सिद्धांत में ज्ञानी जी? अनिर्वचनीयम। ये भी अनिर्वचनीय। क्यों? अगर संसार को सत कहें तो यह भी गलत है, क्योंकि ये नश्वर है, अनित्य है। सत तो उसे कहते हैं जो नित्य रहे। अच्छा, तो इसको असत कह दो। असत भी कैसे कहे? प्रत्यक्ष दिख रहा है। असत तो उसे कहते हैं जो त्रिकाल में ना हो, जैसे खरगोश के सींग, ये असत है। जैसे आकाश में फुलवाड़ी खपुष्प, ये असत है। ऐसा तो असत है नहीं संसार, ये तो दिख रहा है। अरे भगवान के बराबर सत नहीं है, ठीक है मान लिया, लेकिन है तो। और अगर कहे ये संसार भगवान से अभिन्न है, ये भी गलत। भगवान तो आनंदमय है, ज्ञानमय है, नित्य है, और ये तो सब उसका उल्टा है संसार। तो अभिन्न भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, और भिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो एक ब्रह्म को मानते हैं, दो मानते ही नहीं। तो फिर क्या करोगे अब? अनिर्वचनीयम। एक बड़ी मजेदार बात है, हमारे यहाँ गांव में शादी ब्याह जब होते हैं तो उसमें एक आइटम यह भी होता है कि दोनों पार्टी के पंडित बैठते हैं और कुछ श्लोक वगैरह बोलते हैं, और अगर बड़े बड़े पंडित हैं तो कोई क्वेश्चन आंसर भी होता है, उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। अरे शास्त्र वास्त्र नहीं, ऐसे ही ग्रामर वगैरह में क्वेश्चन कर दिया कुछ। तो एक पार्टी से काशी से बड़े बड़े विद्वान आए थे और दूसरी पार्टी में कोई विद्वान था ही नहीं संयोग से। तो लोगों ने कहा बड़ी इंसल्ट होगी आज तो, क्योंकि हमारे यहां कोई पंडित नहीं बड़ा। तो एक धूर्त था, उसने कहा देखो हम बताते हैं तरकीब। उसने कहा खूब बड़ी पगड़ी बांधो, सबसे बड़ी, और लंबा दुपट्टा डालो। एक मूर्खानंद को, लंबे चौड़े आदमी को उसने ड्रेस पहना दिया और कहा देखो उधर का पंडित जो भी बोले तो तुम कह देना अशुद्धम नो वक्तव्यम। इतना याद करा दिया उसको, एक सेंटेंस, अशुद्धम नो वक्तव्यम। अब उधर का पंडित कोई दर्शन शास्त्र का प्रश्न कर रहा है तो जब वो प्रश्न कर चुका तो ये बोलते हैं अशुद्धम नो वक्तव्यम। तो बेचारा परेशान हुआ, कहीं गलती हो गई हमसे। फिर वो सावधान होकर बोलने लगा, फिर ये कह दे अशुद्धम नो वक्तव्यम। जब बार बार ये बोले तो एक विद्वान और था उस पार्टी में, उसने कहा कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा किमत्र अशुद्धम, मैंने क्या अशुद्ध बोला? तो फिर कहता है अशुद्धम नो वक्तव्यम। तो बंडा फोड़ हो गया कि इसको कुछ आता जाता नहीं, अशुद्धम नो वक्तव्यम बोलता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी से जब पूछा गया ब्रह्म की परिभाषा करो, अनिर्वचनीय, संसार माया की परिभाषा करो अनिर्वचनीय, जब बताया ही नहीं जा सकता तो पुरुष की साधना कितनी कठिन होगी सोचिए। तो कहत कठिन समुझत कठिन, जब कहना इतना कठिन है तो समझना और अधिक कठिन होगा। अप्रसाधन कठिन विवेक, फिर उसका साधन तो और ही बड़ा कठिन होगा। और अगर कोई चल भी पड़े करोड़ों में कोई, तो पुण्य प्रत्यूह अनेक, ज्ञान कपंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न ला गई बारा। तलवार की धार पर चलना है, बार बार गिरेगा। क्यों गिरेगा? इसलिए गिरेगा कि वो अपने बल पर चल रहा है, और भक्त घोर अज्ञानी है, विषयी है, फिर भी नहीं गिरेगा, क्योंकि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। भागवत, भगवान रक्षा करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहं। गीता, ताते नास न होए दास कर। जैसे एक बंदर होता है, बंदर देखा होगा आप लोगों ने, उसका बच्चा होता है, और एक बिल्ली होती है, उसका बच्चा होता है। तो बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाकर भागती है, यानी बच्चा कुछ नहीं करता, उसकी मां बच्चे को पकड़े रहती है अपने मुंह में। और बंदर जो है उसकी मां बच्चे को नहीं पकड़ती, बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है। जो बंदर जंप करता है एक डाल से दूसरी डाल पर, तो जरा भी गफलत हुई कि उसका बच्चा नीचे आकर गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन बिल्ली स्वयं पकड़े है, इसलिए उसका बच्चा नहीं गिर सकता। तो भक्त को भगवान पकड़े रहता है, इसलिए उसका पतन नहीं होता। भगवान ने गीता में एक चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। ये नहीं कहा कि न मे ज्ञानी, न मे कर्मी, न मे योगी, ये नहीं कहा। केवल मेरे भक्त के लिए मैं ठेका लेता हूं, उसका पतन नहीं हो सकता। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित्। अगर मेरे भक्त से कोई अपराध हो भी जाता है, तो धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, मैं ठीक कर देता हूं, क्योंकि मेरे शरणापन्न है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार कर्मी ज्ञानी सब में प्रारंभ में शर्त, बीच में खतरा, अंत में जाकर भी हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, और भक्ति में सब अधिकारी हैं। समस्त शास्त्रों में भक्ति और समस्त द्रव्यों से भक्ति। देखिए सुविधा, आप यज्ञ करेंगे, कोई देवताओं की पूजा करेंगे, इनको लाल वस्त्र लाओ, इनको सफेद वस्त्र लाओ, इनको सिंदूर लाओ, इनको, सब में अलग अलग नियम कायदे कानून हैं। हम तो गरीब हैं, गरीब हो तो कैसे हो सकता है, जाओ यज्ञ नहीं होगा फिर। और हमारे ठाकुर जी कैसे कहे, वो कहते हैं समस्त द्रव्यों से हमारा काम बन जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। गीता, पत्ता फल फूल मिट्टी कोई चीज तुम दे दो हमको, हम बड़े प्यार से खाएंगे उसको। पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु। भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्त तौ किमर्थं क्रियते प्रयत्न। अरे पत्र पुष्प से जो प्रसन्न हो जाए, इतने सरल भगवान को छोड़ करके, और तुम अनेक मार्गों में जा रहे हो और फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, आखिर में नाक रगड़ने यही आओगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के तुम्हारी मुक्ति जो अद्वैत की है, सायुज्य की है, एकत्व की है, वो भी नहीं मिलेगी। तो समस्त द्रव्यों से भक्ति और समस्त कार्यों में भक्ति, और देखिए कितना सरल है। हम जो भी करें, यत करोषि यदस्नासि, जो भी खाए, यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं मुझे अर्पित कर दो फिजिकल वर्क भी, वैदिक वर्क तो है ही है जो है, फिजिकल वर्क भी। अच्छा हम सोने जा रहे हैं, क्या अर्पित करें भगवान को? सोने जाओ तो भगवान को चिंतन करो और कहो प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए कि ये आपका जो फल है शरीर ये ठीक रहे, तो कल फिर आपका स्मरण करें। यदि हम नहीं सोएंगे तो फिर हमें शरीर का कष्ट हो जाएगा, तो आपका स्मरण नहीं कर पाएंगे। ये भी श्री कृष्ण के अर्पित, यानी आपके प्रति क्षण के प्रत्येक कर्म को श्री कृष्ण को अर्पित करने से प्रति क्षण स्मरण हो गया, भक्ति बन गई। यानी यह भी शर्त नहीं है कि इस प्रकार से करना होगा, तुमको कर्म को अर्पित किया जाएगा। रसगुल्ला अगर अर्पित करोगे तो हम खा लेंगे, और अगर तुमने अंडबंड चीज अर्पित की तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। सदन कसाई मांस अर्पित करता है, खाना पड़ेगा आपको। भगवान वो शुद्ध वस्तु है जो अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देगा, स्वयं अशुद्ध नहीं होगा। गंगा जी वो पर्सनैलिटी है, गंदे नाले जाकर गंगा जी बन जाएंगे, गंगा जी गंदा लाला नहीं बन जाएंगे। रवि पावक सुर सरी नाई, तो भक्ति समस्त कार्यों में और भक्ति समस्त क्रियाओं में। ये बड़े बड़े कर्मकांडी जो कर्मकांड करते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। सब पूजा उजा करा करके मंत्र मंत्र सब बोलने के बाद कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हे श्री कृष्ण मंत्र में गड़बड़ी हो गई हो, क्रिया में गड़बड़ी हो गई हो, तो क्षमा कीजिएगा। ये लोग ये भी आ गए क्षमा मांगने, तुम्हें तो कर्म का बड़ा खबर था, क्यों आए श्री कृष्ण के पास? अभी नहीं, संध्या करने का पहला मंत्र है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरे कुंडली काक्षम स बाह्याभ्यंतर स्तुति। ए जजमान हथेली में पानी लो, लिया, हाथ से ऐसे ऐसे फेंको अपने ऊपर, हम मंत्र पढ़ रहे हैं। अब बेचारा जजमान जानते ही नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, और मंत्र पढ़ने वाला भी नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूं। वरना उसको बताओ, सारे भारत में किसी पंडित ने कभी किसी यजमान से कहा पानी हाथ में लो, ले लिया, अब श्री कृष्ण का स्मरण करो? किसी ने कहा? किसी ने भी कहा हो बता दे, कृपालु का चैलेंज है। अजी वो रूप उससे श्री कृष्ण का ध्यान करवा में तो हमारी पूजा कब खत्म होगी? पंडित यही बोलेगा, बड़े से बड़ा पंडित बोलेगा कि अगर मैं उससे कहूं कि ये मंत्र का ये अर्थ है इसलिए तुम पानी हाथ में लेकर श्री कृष्ण का ध्यान करो, तो श्री कृष्ण का ध्यान करे तो मैं क्या करूंगा, बैठा रहूंगा? तो ये कर्मकांड कब समाप्त होगा? हाँ, लेकिन देखिए पहला मंत्र चाहे सवेरे की संध्या हो चाहे शाम की हो, जब भी संध्या करेगा कोई पंडित ये पहला मंत्र बोलेगा। कोई पूजा पाठ होगा तो पहला मंत्र ये है। इस मंत्र का मतलब है बाह्याभ्यंतर शुचि। जो श्री कृष्ण का स्मरण कर ले तो बाहर की भी शुद्धि हो जाए भीतर की भी हो जाए। क्यों जी? जब बाहर की भी शुद्धि हो गई भीतर की भी हो गई तो इसकी आगे संध्या क्यों कर रहे हो? और क्या बचा? क्या ऊपर की सिद्धि कर रहे हो? अरे भीतर की भी शुद्धि हो गई बाहर की भी शुद्धि हो गई उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? ये अघमर्षण मंत्र है, ये अमुक मंत्र है, ये सूर्योपस्थान है, ये सब क्यों कर रहे हो? कोई जवाब नहीं विचारों के पास। तो समस्त क्रियाओं में भक्ति, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, जितने भी स्थान है विश्व में सर्वत्र भक्ति। देखिए कर्मकांड करने वाला जहां बैठेगा आसन पवित्र करेगा दिशाओं को शुद्ध करेगा। सबसे पहली शर्त है यज्ञाधिक में, कोई मुर्दा घाट पर यज्ञ नहीं हो सकता। अगर करता है कोई तो वेद विरुद्ध है। लेकिन भक्ति में न देश नियमस्तस्मिल न काल नियमस्तथा, चाहे जहां बैठ के करो, मैखाने में करो, पाखाने में करो, गुसलखाने में करो, कहीं करो भक्ति। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। तभी तो महाराक्षस हिरण्यकश्यपु के खंभे से प्रकट हुए और दिखा दिया संसार को। ये मत समझो कि राक्षस के यहां में नहीं रहता, राक्षस के अंतःकरण में भी रहना पड़ता है उसके आइडियाज नोट करने के लिए, और बाहर भी रहना पड़ता है। तो भक्ति सर्वत्र और सब समय। सवेरे की संध्या कर रहे हो? हाँ, तो मंत्र बोलो, यद रात्र्या पाप मकार सम्मनसा वाचा हस्ताभ्यम। शाम की संध्या कर रहे हो? अब बदल दो, यद अन्ना पाप मकार सम्मनसा वाचा हस्ताभ्यम। और भक्ति कर रहे हो, चाहे जब करो, जिस समय करो, जैसे करो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। भक्तरसामृतसिन्धु, जैसे भी आपका मन लगे भगवान में लगाओ। आजादी है, न नहाने की शर्त, न धोने की, न पूरब की तरफ मुंह करें कि पश्चिम की तरफ करें, कैसा गंदा स्थान है कि कुछ नहीं। तुम्हारा मन गंदा है, तुम कहां पवित्र स्थान ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हारा शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, तो स्थान पवित्र क्या कर लेगा तुम्हारा? ये जितनी भी गंदी चीजें हैं इनको शुद्ध करने के लिए ही तो श्री कृष्ण की भक्ति करने जा रहे हो। तो श्री कृष्ण भक्ति में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है, सब उसके अधिकारी और सदा सर्वत्र। एक माइक जगत से लेकर गोलोक तक भक्ति सर्वत्र। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भक्ति नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहां भक्ति नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं, ऐसा कोई कर्ता नहीं। समस्त कर्ताओं में भी भक्ति, मैंने आपको बताया ना, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा कोई भी हो। ऐसी भक्ति और उस भक्ति का फल अंतिम, और उस भक्ति के बिना कर्म योग ज्ञान तपश्चर्या कोई भी माया से मुक्ति देने की बात तो बहुत दूर की है, अपने अपने मार्ग का फल भी नहीं दे सकते। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। इसीलिए नारद जी ने कहा, कर्म योग ज्ञाने भ्योप्यधिकतरा, गीता ने कहा तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञान भ्योपिमतोधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम भक्ति। ये जो ज्ञानी ज्ञानी भक्त हैं वो गीता साफ कह रही चतुर्विधा भजन्ते माम भजन्ते, ये चारों प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं वे सुकृति हैं। अगर मेरी भक्ति ना करे तो सकाम कर्म भी निंदनीय निष्काम कर्म भी निंदनीय। ध्यान दो, ये निष्काम कर्म का बड़ा नाम सुनते हैं आप लोग, सारी दुनिया में गीता की फिलॉसफी को लोग समझते हैं भोले भाले लोग कि निष्काम कर्म है लिखा गीता में, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से माया निवृत्ति नहीं हो सकती, तो त्याज्य है। सकाम से क्या होगी, निष्काम से भी नहीं हो सकती। उस कर्म से माया निवृत्ति हो सकती है जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ हो, भगवत अर्पित हो जाए। देखिए तीन प्रकार की भक्ति होती है, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वभाव सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वभाव सिद्धा भक्ति। तो आरोप सिद्धा भक्ति में तो किसी एम से, किसी उद्देश्य से कोई भक्ति करता है, इसलिए वो भी त्याज्य है। और संग सिद्धा भक्ति में कर्म या ज्ञान का मिक्सचर होता है, प्योर भक्ति नहीं है, वो भी निंदनीय है, वो भी त्याज्य है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, भूले न होंगे, ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्यात्। इस श्लोक में तन्मायया तो बुध आभजे तम भक्त्या, भक्त्या भजे, और भक्त्या ही नहीं भक्त्यै कया, केवल भक्ति से ही भक्ति करना है। कर्म युक्त नहीं, ज्ञान युक्त नहीं, मिक्सचर ना करो, मिलावट ना करो उसमें, प्योर भक्ति यानी स्वभाव सिद्धा भक्ति, प्योर भक्ति, कोई मिक्सचर नहीं। इसीलिए कहा ज्ञान कर्माध्यनावृतम, इसीलिए कहा अप्रतिहता, किसी का आवरण, किसी का अधिकार भक्ति के ऊपर नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, क्योंकि ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। अरे जब ज्ञान विज्ञान उसके अंडर में है तो भक्ति को कौन अंडर में करेगा। तो भक्ति में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, यद्यपि कर्म मिश्रा भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान मिश्रा भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें डाउट नहीं, लेकिन वो विशुद्धा भक्ति नहीं। अच्छा और तरह समझिए, एक सात्विकी भक्ति होती है, एक राजसी भक्ति होती है, एक तामसी भक्ति होती है, एक निर्गुणा भक्ति होती है, ये चार प्रकार की भक्ति। तो राजसी सात्विकी, राजसी तामसी भक्ति तो सकाम भक्ति है, वो तो त्याज्य है, और सात्विकी भक्ति ज्ञानियों की है। सत्वात संजायते ज्ञानम, बताया था एक दिन, भूले न होंगे आप लोग, सात्विक गुण जो है वो ज्ञानियों का है तो उनकी सात्विकी भक्ति है, और निर्गुणा भक्ति में केवल सेवा भावना होती है, उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं होती। समस्त कामनाओं से रहित मोक्ष माने समझते हैं आप लोग, मोक्ष माने छुटकारा पाना। मोक्ष मुचलि धातु से बनता है, मुचलि धातु है जिसका मतलब छोड़ना, छुटकारा पाना। जैसे किसी को बेड़ी लगी है हाथ में पैर में और बेड़ी खोल दिया, इसका नाम मुक्ति। बंधन से छुटकारा पाना इसका नाम मुक्ति। तो काहे का बंधन है, क्या मुसीबत है? मुसीबत है, ये मुसीबत है। क्या दुख है आपको जो आप चाहते हैं मुक्ति? दुख है हमको, प्रतिक्षण यही दुख है, यानी आत्यंतिक दुख निवृत्ति हम चाहते हैं। जैसी दुख निवृत्ति हमारी गहरी नींद में होती है, ऐसी दुख निवृत्ति हम सदा के लिए चाहते हैं। ये मोटी अकल की बात। सुषुप्ति अवस्था में टेम्पररी दुख निवृत्ति होती है गहरी नींद में, और समाधि में तुरिया अवस्था में सदा को दुख निवृत्ति हो जाती है। तो सदा को दुख निवृत्ति चाहता है, और भक्त कहता है कि हम दुख निवृत्ति क्यों मांगे? आनंद प्राप्ति जो हमको होगी सेवा में, तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। वो बिचारी मुक्ति तो हाथ जोड़े खड़ी रहती है, हमको भी तुमको, अरे तुमको ले लेंगे तो हमारी सेवा बात, सेवा की सब बातें बिगड़ जाएगी। वो सकैतवा भक्ति है। अब और गंवारी भाषा में समझिए, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक अकैतवा भक्ति, एक सकैतवा भक्ति। यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण, इन तीनों गुणों की जहां तक गति हो मोक्ष तक, ये तो सकैतवा भक्ति है। अधर्म प्रोज्जित कैतवा, जो भागवत का सिद्धांत जहां से प्रारंभ होता है, वो अकैतवा भक्ति है, जिसमें सर्वाभिलाषिता शून्यम, अहैतुकी, अप्रतिहता, वो भक्ति, कोई कामना नहीं, सेवा कामना, सेवा भावना। कोई कामना का अर्थ यह न लगा लेना कि सेवा भावना भी एक कामना है, ऐसा न सोचना। हे आरागत न उत्तमास्पदत्वात्, आश्रय जो है भगवान और महापुरुष है, इसलिए उसके प्रति कुछ भी है सब श्लाघ्य है, वंदनीय है। वेद व्यास यहां तक कहते हैं, सकर्ता सर्वधर्माणां यो भक्तस्तव केशव, और सकर्ता सर्व पापानां यो न भक्तस्तवाच्युत। वह व्यक्ति समस्त पापों का करने वाला मान लिया जाएगा, चाहे वो तपस्वी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, जो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता वो समस्त पाप कर रहा है, ये लिखा जाएगा। और जो भक्ति करता है उसके पाप भी नहीं लिखे जाएंगे। मन निमित्तं कृतं पापं मद्धर्माय च कल्पते, मामनाधित्य धर्मोपि पापं स्यान्मत् प्रभावतः। पद्म पुराण, भगवान कहते हैं मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है, और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। जैसे नीचे आधार न रखो और महल बनाओ, वो महल ढह जाएगा। आधार तो भगवान है समस्त धर्मों का, सर्ववेद मयो हरि, धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेद मयो हरि। भागवत धर्म का जो मूल है, आधार है, वो भगवान है, उसी को आपने गायब कर दिया। अब क्या रहा? समस्त पाप का एक परिचय पत्र समझे रहिए। जितनी देर श्री कृष्ण का स्मरण आपने किया, गुरु का स्मरण किया, बस उसके अलावा आपने जो कुछ किया सब पाप। आप अहंकार करते रहिए, मैंने कोई पाप किया है क्या? अरे पाप तो कर ही रहे हो प्रतिक्षण, कोई पाप किया है? सब पाप है। अरे अपनी मां से प्यार करते हैं जी, पाप है। अपने बाप से करते हैं, पाप है। किसने कहा तुमको प्यार करने के लिए? अरे अपने बेटे से करते हैं, अपनी बीबी से करते हैं। ना ना, संसार में तुम इसलिए नहीं भेजे गए कि ये गोबर गणेश से प्यार करो। प्यार भगवान से करना है, यहां व्यवहार करना है। मन यार में, तन कार में, संसार में। तो भक्ति इतनी सरल है और इतना बड़ा फल देती है। ऐसी भक्ति के विषय में भी जो न सोचे उससे बड़ा अभागा कौन है। और बहुत सी बातें भक्ति संबंधी हैं, फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।